धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की एक विवाह योग्य पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। वह कुरुवंश की एक अत्यधिक योग्य कन्या थी और अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। ऐसी दशा में स्वयंवर संस्कार का समायोजन किया जाता है जिससे कि कन्या अपनी रुचि के अनुसार वर का चुनाव कर सके। लक्ष्मणा स्वयंवर सभा में जब वर चुनने वाली थी तब साम वहां उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक श्रीमती जाम्बवती तथा श्री कृष्ण के वे पुत्र थे। सांब को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह एक अति दुष्ट बालक थे और सदैव अपनी माता के समीप रहते थे। सांब नाम ऐसे पुत्र की ओर संकेत करता है जो अपनी माता का अत्यधिक दुलारा होता है। अंबा का अर्थ है माता और स का अर्थ है साथ। अतयो सांब को यह विशेष नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह सदैव अपनी माता के साथ रहता था। इसी कारण वे जाम्बवते सुत नाम से भी विख्यात थे। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, श्री कृष्ण के सभी पुत्र अपने महान पिता भगवान श्री कृष्ण के समान ही योग्य थे। यद्यपि लक्ष्मणा साम से विवाह करने को इच्छुक नहीं थी, तथापि साम दुर्योधन सुता लक्ष्मणा को प्राप्त करना चाहता था। अतयो साम ने स्वयंवर सभा से बलपूर्वक लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। चूंकि साम सभा से लक्ष्मणा को बलपूर्वक ले गया, अतयो धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, उजहन तथा अर्जुन आदि कुरुवंश के सभी सदस्यों ने इसे अपनी पारिवारिक परंपरा का अपमान समझा कि किशोर साम ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया। उन सबको ज्ञात था कि साम को वरण करने में लक्ष्मणा की तनिक भी अभिरुचि नहीं है। उसे अपने पति का स्वयं चुनाव करने का अवसर नहीं दिया गया, अपितु इसके स्थान पर यह किशोर उसे बलपूर्वक उठा ले गया। अतयो उन्होंने निश्चय किया कि उसे दंड देना चाहिए। उन्होंने एक मत होकर घोषणा की कि साम अत्यंत धृष्ट है और उसने कुरुओं की कुल परंपरा का अपमान किया है। अतयो कुरु परिवार के वयोवृद्धों के परामर्श के अधीन उन सब ने उस किशोर का वध न करते हुए उसे बंदी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लक्ष्मणा का विवाह अब सांब के अतिरिक्त अन्य किसी युवक से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साम ने पहले से उसका स्पर्श कर लिया है। या वैदिक प्रणाली के अनुसार किसी एक युवक के द्वारा उपभोग कर लिए जाने के पश्चात कन्या का विवाह किसी अन्य युवक से नहीं किया जा सकता है, न ही कोई ऐसी कन्या से विवाह करने को सहमत होगा जिसका किसी अन्य युवक से इस प्रकार संबंध रहा हो। भीष्म जैसे वयोवृद्ध परिवार के सदस्य उसे बंदी बनाना चाहते थे। सांब को पाठ पढ़ाने के लिए कुरुवंश के समस्त सदस्य विशेष रूप से महान योद्धागण एक हो गए और इस छोटे से युद्ध के लिए कर्ण को सेनापति बनाया गया। जब शाम को बंदी बनाने की योजना बनाई जा रही थी, तब कौरवों ने आपस में विचार किया कि उसके बंदी होने पर यदुवंशी उनसे अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे। ऐसी संभावना भी थी कि यदुवंशी इस चुनौती को स्वीकार करके उनसे युद्ध छेड़ दे, किंतु वे भी सोचने लगे, यदि वे यहाँ युद्ध करने के लिए आए तो भी वे क्या कर सकेंगे। यदुवंशी कुरुवंशियों की समता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुरुवंश के राजा सम्राट हैं, जबकि यदुवंश के राजा केवल अपनी भू संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। कौरव ने सोचा, यदि अपने पुत्र के बंदी होने के कारण वे हमें चुनौती देने यहाँ आए, तो हम भी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेंगे। हम सब उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि दबाव में आकर अपने आप उनका दमन हो जाएगा। जैसे कि प्राणायाम की यौगिक प्रक्रिया के द्वारा इंद्रियों का दमन हो जाता है, योग की यांत्रिक प्रणाली में शरीर के अंदर की वायु का नियमन किया जाता है तथा इंद्रियों का दमन करके उन्हें भगवान विष्णु पर ध्यान करने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में संलग्न होने से रोक दिया जाता है। भीष्म तथा धृतराष्ट्र जैसे कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्यों से परामर्श करने तथा उनकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञ केतु तथा कन्या के पिता दुर्योधन आदि महान योद्धाओं ने, जो महारथी कहलाते थे, उन सब से महान योद्धा भीष्म देव के मार्गदर्शन में किशोर सांब को बंदी बनाने का प्रयास किया। उनकी युद्ध कुशलता के अनुसार योद्धाओं का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण किया जाता है। उनमें महारथी, एक रथी तथा रथी नामक वर्ग भी हैं। ये महारथी अकेले ही सहस्त्रों पुरुषों से युद्ध कर सकते थे। सांब को बंदी बनाने के लिए वे सब एक हो गए। सांब भी एक महारथी था, किंतु अकेला था और उसे 6 अन्य महारथियों से युद्ध करना था। फिर भी जब उसने कुरुवंश के समस्त महान योद्धाओं को उसे बंदी बनाने के लिए उसके पीछे आते हुए देखा, तो वह भयभीत नहीं हुआ। वह एकाकी ही उनकी ओर मुड़ा और अपना उत्तम धनुष लेकर उसी मुद्रा में खड़ा हो गया, जैसे वन्य पशुओं के सम्मुख सिंह दृढ़तापूर्वक खड़ा रहता है। कर्ण उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने सांब को चुनौती दी, भाग क्यों रहे हो, खड़े रहो तो हम तुम्हें पाठ पढ़ाएं। जब एक क्षत्रिय दूसरे को खड़े रहकर युद्ध करने की चुनौती देता है, तब वह क्षत्रिय जा नहीं सकता, उसे अवश्य ही युद्ध करना होता है। अतएव जैसे ही सामने चुनौती स्वीकार की और अकेला ही उनके सम्मुख खड़ा हुआ, उन समस्त महान योद्धाओं ने उस पर एक साथ बाण वर्षा आरंभ कर दी। जिस प्रकार सिंह अनेक भेड़ियों तथा सियारों के द्वारा पीछा किए जाने पर भयभीत नहीं होता है, उसी भांति यदुवंशी यशस्वी पुत्र सांब भी भयभीत नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में सांब अचिंत्य शक्तियों से युक्त था। कुरुवंश के योद्धाओं ने अनुचित रूप से उसके विरुद्ध बाणों का प्रयोग किया था, अतयो सांब अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अत्यंत कौशल पूर्वक उनसे युद्ध किया। सर्वप्रथम उसने 6 सारथियों को 6 अलग अलग बाण मारे। प्रत्येक रथ पर 4-4 बाण मारकर 4 अन्य बाणों का उपयोग उसने सारथियों के घोड़ों का वध करने के लिए किया। एक बाण का उपयोग रथवान के लिए तथा एक एक बाण कर्ण तथा अन्य प्रसिद्ध योद्धाओं के लिए उसने चलाए। जब श्याम इस प्रकार परिश्रम पूर्वक अकेले ही छहों महान योद्धाओं से युद्ध कर रहा था, तब उन योद्धाओं ने श्याम की अचिंत शक्ति की सराहना की। युद्ध के मध्य भी उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह किशोर श्याम अद्भुत था, किंतु क्षत्रियोचित रीति से युद्ध चलता रहा और यद्यपि यह अनुचित था, तथापि उन सब ने मिलकर श्याम के रथ को खंड खंड करके उसे रथ से उतरने के लिए बाध्य कर दिया। छह योद्धाओं में से चार ने श्याम के चारों घोड़ों को मार दिया और एक ने श्याम के धनुष की डोरी काट ली, जिससे कि वह अब उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार घोड़ युद्ध के पश्चात तथा अत्यंत कठिनाई से वे श्याम को रथ विहीन करके उसे बंदी बनाने में सफल हुआ। इस तरह कुरुवंश के योद्धा विजयी होकर अपनी पुत्री लक्ष्मणा को उनसे छिन ले गए। इसके उपरांत अपनी विजय पर उल्लसित होते हुए उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। महर्षि नारद ने तत्काल ही यदुवंश को यह सूचना पहुंचाई कि श्याम बंदी बना लिया गया है। उन्होंने यदुवंशियों को समस्त कथा सुनाई। श्याम के बंदी बनाए जाने पर तथा विशेष रूप से छह योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से उसके बंदी बनाए जाने पर यदुवंशी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए। अतः यदुवंश के राजा उग्रसेन की अनुमति प्राप्त करके वे कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तत्पर हुए। यद्यपि भगवान श्री बलराम को भलीभांति ज्ञात था कि कलयुग में लोग छोटी सी बात पर युद्ध करने को तत्पर रहते हैं, फिर भी उन्हें यह विचार रुचिकर नहीं लगा कि कलयुग से प्रभावित होने पर भी दो महान वंश कुरुवंश तथा यदुवंश परस्पर युद्ध करे। उन्होंने बुद्धिमता पूर्वक विचार किया, उनसे युद्ध करने के स्थान पर मुझे वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति दीजिए, मुझे प्रयास करने दीजिए कि यह विवाद परस्पर समझौते के द्वारा समाप्त कर दिया जाए। बलराम जी का विचार था कि यदि कुरुवंश श्याम को उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित मुक्त करने पर सहमत हो जाए तो युद्ध से बचा जा सकता है। अतयो उन्होंने विद्वान पुरोहित तथा ब्राह्मणों और साथ ही साथ यदुवंश के कुछ वयोवृद्ध सदस्यों सहित हस्तिनापुर जाने के लिए तत्काल ही एक उत्तम रथ का प्रबंध किया। उन्हें विश्वास था कि कुरुवंशी इस विवाह के लिए सम्मत हो जाएंगे और आपस में युद्ध की संभावना टल जाएगी। विद्वान ब्राह्मणों तथा यदुवंश के वयोवृद्धों सहित रथ पर हस्तिनापुर जाते हुए भगवान श्री बलराम ऐसे प्रतीत होते थे जैसे शुभ्र आकाश में जगमगाते हुए नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा चमकता है। जब भगवान श्री बलराम हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे, तब उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया, अपितु वे एक छोटे से उद्यान गृह में ठहरे। तत्पश्चात उन्होंने उद्धव जी से कहा कि वे कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करके उनसे पूछे कि वे यदुवंश से युद्ध करना चाहते हैं अथवा समझौता करना चाहते हैं। उद्धव जी कुरुवंश के प्रमुखों से भेंट करने गए और उन्होंने श्री भीष्मदेव, श्री धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, श्री बलि, श्री दुर्योधन तथा श्री बाह्यक सहित समस्त प्रमुख सदस्यों से भेंट की। उन्हें यथोचित प्रणाम करने के उपरांत उद्धव जी उन्हें बताया कि भगवान श्री बलराम नगर द्वार के बाहर उद्यान में आ चुके हैं। कुरुवंश के प्रमुख विशेष रूप से धृतराष्ट्र व दुर्योधन अत्यंत हर्षित हो गए, क्योंकि उन्हें भलीभांति ज्ञात था कि भगवान श्री बलराम उनके परिवार के एक महान शुभ चिंतक हैं। यह समाचार सुनकर उनके हर्ष की सीमा न रही। अतयो उन्होंने तत्काल ही उद्धव जी का स्वागत किया। भगवान श्री बलराम का उचित रूप से स्वागत करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में उनके स्वागतार्थ शुभ सामग्री ली और उनसे भेंट करने नगर द्वार के बाहर गए। अपने अपने पद के अनुसार उन्होंने भगवान श्री बलराम को उत्तम गाय तथा अर्घ देकर उनका स्वागत किया या आरात्रिक जल मधु मक्खन आदि की बनी मीठी वस्तुएं, पुष्प तथा चंदन के आलेप से सुगंधित माला आदि पदार्थों को अर्घ कहा जाता है। उन सबको ज्ञात था कि भगवान श्री बलराम ही श्री भगवान हैं। अतयो उन्होंने भगवान के सम्मुख अत्यंत आदरपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। परस्पर एक दूसरे का सुख समाचार पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया और जब यह औपचारिकता पूर्ण हो गई तब भगवान श्री बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्यपूर्वक उनके सम्मुख निम्नांकित शब्द विचारार्थ प्रस्तुत किए। प्रिय मित्रों, इस समय मैं सर्वशक्तिमान राजा उग्रसेन का आदेश लेकर एक दूत के रूप में आपके समीप आया हूँ। अतयो कृपया आप ध्यानपूर्वक सावधानी से यह आदेश सुनिए। कृपया एक क्षण भी नस न करके तत्काल आदेश को पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। राजा उग्रसेन को भलीभांति ज्ञात है कि कुरुवंश के आप योद्धाओं ने अकेले साम से अनुचित रूप से युद्ध करके उसे बंदी बना लिया है। उसे बंदी बनाने में आपको अत्यंत कठिनाई उठानी पड़ी तथा व्यूह रचना करनी पड़ी। हम सब ने यह समाचार सुना है, किंतु हम अधिक उद्विग्न नहीं हुए क्योंकि हम परस्पर अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मेरे विचार में हमें अपने अच्छे संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें अनावश्यक युद्ध न करके अपनी मैत्री स्थिर रखनी चाहिए। अतयो कृपया साम को तत्काल मुक्त कर दीजिए तथा उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित उसे मेरे समक्ष ले आइए। जब भगवान श्री बलराम ने शौर्यपूर्ण अधिकार श्रेष्ठता तथा वीरता युक्त आदेशपूर्ण स्वर में ये शब्द कहे तब उनके कथन कुरुवंश के प्रमुखों को रुचिकर नहीं प्रतीत हुआ। इसके विपरीत वे सब उद्वेलित हो उठे और अत्यंत क्रोध से उन्होंने कहा, अहो ये शब्द चकित करने वाले हैं, किंतु कलयुग के अनुकूल ही है। अन्यथा बलराम इस प्रकार निंदनीय रीति से कैसे बोल सकते थे। बलराम जी के द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा शैली अपमानजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के प्रभाव के कारण पैरों के लिए उपयुक्त पादुका सिर पर चढ़ाना चाहती है जहां मुकुट धारण किया जाता है। यदुवंश से हमारा संबंध विवाह के कारण है और इसी कारण उन्हें हमारे साथ निवास करने भोजन करने तथा शयन करने का अवसर दिया गया है। अब वे इन विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहे हैं। जब हमने उन्हें राज्य करने के लिए अपने राज्य का एक भाग दिया उससे पूर्व उनका कोई स्थान नहीं था और अब वे हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यदुवंश को चंवर पंखा शंख श्वेत छत्र राजमुकुट राज सिंहासन आसन पलंग तथा राजवंशों के लिए उपयुक्त प्रत्येक राज चिन्हों का उपयोग करने दिया। उन्हें ऐसी राजसी सामग्री का प्रयोग हमारी उपस्थिति में नहीं करना चाहिए था, किंतु हमने अपने पारिवारिक संबंध का ध्यान करके उन्हें नहीं रोका। अब वे हमें ही आदेश देने की धृष्टता कर रहे हैं। उनकी धृष्टता की सीमा समाप्त हो गई। अब हम उन्हें आगे इस प्रकार कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, न ही अब हम उन्हें इन राज चिन्हों का उपयोग करने देंगे, किंतु इन सब वस्तुओं को उनसे छीन लेना ही सर्वोत्तम है। सर्प को दूध पिलाना अनुचित है, क्योंकि ऐसा दयापूर्ण कार्य उसके विष में वृद्धि ही करता है। यदुवंशियों ने जिस थाली में खाया, अब वे उसी में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संपन्न स्थिति हमारे उपहारों तथा सदैव व्यवहार के कारण ही है। फिर भी वे इतने निर्लज हैं कि वे हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। वे सब कार्यकलाप इतने खेदपूर्ण हैं, यदि भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन जैसे कुरुवंश के सदस्य अनुमति न दे तो इस विश्व में कोई भी किसी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता है। जैसे कि सिंह की उपस्थिति में मेमना जीवन का उपभोग नहीं कर सकता है, उसी भांति हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग के राजा इंद्र सभी देवताओं के लिए भी जीवन में आनंद उठाना संभव नहीं है। फिर साधारण मानव का तो कहना ही क्या। वस्तुतः कुरुवंश के सदस्य अपने ऐश्वर्य, राज्य, कुलीनता, पारिवारिक परंपरा, महान योद्धाओं, परिवार के सदस्यों तथा विशाल साम्राज्य के कारण अत्यंत गर्वोन्मत्त हो गए थे। उन्होंने सभ्य समाज की सामान्य औपचारिकता का भी पालन नहीं किया और भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में यदुवंश के लिए अपमानजनक शब्द कहे। इस प्रकार शिष्टाचार विहीन रीति से वार्तालाप करते हुए वे अपने नगर हस्तिनापुर लौट गए। यद्यपि भगवान श्री बलराम ने उनके अपमानजनक शब्दों को धैर्यपूर्वक सुना तथा उनके असभ्य व्यवहार को चुपचाप देखा, तथापि उनकी आकृति से यह स्पष्ट हो गया कि वे क्रोध से जल रहे हैं तथा अत्यंत प्रतिहिंसापूर्वक प्रतिशोध लेने का विचार कर रहे हैं। उनके शरीर की आकृति इतनी उद्विग्न हो गई कि किसी के लिए भी उनकी ओर देख सकना कठिन था। वे उच्च स्वर से हंसे और बोले, यह सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, ऐश्वर्य, सौंदर्य और भौतिक प्रगति के कारण अत्यंत गर्वोन्मत्त हो जाता है, तब उसे शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा नहीं रहती है। वह अन्य सबके प्रति वैरभाव रखता है। ऐसे व्यक्ति को मृदु व्यवहार तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए सदुपदेश देना व्यर्थ है। इसके विपरीत उसे दंड देने के लिए मार्ग तथा साधनों की खोज करनी चाहिए। सामान्यतः भौतिक ऐश्वर्य के कारण मनुष्य पशु के समान बन जाता है। पशु को शांतिपूर्ण रहने का उपदेश देना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में, पशुओं को ठीक राह पर चलाने का एकमात्र साधन डंडा है। देखो तो कि कुरुवंश के सदस्य कितने धृष्ट हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सहित यदुवंश के समस्त सदस्यों के अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी मैं शांतिपूर्ण समझौता करना चाहता था। वे कुरुवंश के समस्त राज्य पर आक्रमण करने को तत्पर थे, किंतु मैंने उन्हें शांत किया और यहाँ आकर बिना युद्ध के मामले का समझौता कराने का कष्ट किया। इस पर भी वे दुष्ट ऐसा व्यवहार करते हैं। यह स्पष्ट है कि वे शांतिपूर्ण समझौते के इच्छुक नहीं हैं, अपितु तथ्य यह है कि वे युद्ध के इच्छुक हैं। उन्होंने यदुवंश को गाली देते हुए अत्यंत घमंड से मेरा अपमान किया है। स्वर्ग का राजा इंद्र भी यदुवंश के आदेश का पालन करता है और तुम भोज, वृष्णि, अंधक तथा यदुवंश के प्रमुख राजा उग्रसेन को एक छोटी सी टुकड़ी का नायक कहते हो। तुम्हारा निष्कर्ष अद्भुत है। तुम्हें राजा उग्रसेन की परवाह नहीं है, जिनके आदेश का पालन राजा इंद्र भी करता है। यदुवंश के श्रेष्ठ पद पर विचार करो। उन्होंने बलपूर्वक स्वर्गलोक के सभागृह तथा पारिजात वृक्ष दोनों का उपयोग किया है और फिर भी तुम सोचते हो कि वे तुम्हें आदेश नहीं दे सकते हैं? क्या तुम यह भी विचार नहीं करते कि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं? ठीक है, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तब तुम इसी बात के अधिकारी हो कि तुम्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाया जाए। चंवर, पंखा, श्वेत छत्र, राज सिंहासन आदि अन्य राजस्य सामग्री जैसे राजस्य चिन्हों का उपयोग यदुवंश न करे, यह सोचने में तुमने अपनी बुद्धिमानी समझी है। क्या इसका यह अर्थ है कि समस्त सृष्टि के भगवान श्रीदेवी लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण भी इस राजस्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते हैं? श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि की उपासना समस्त महान देवता भी करते हैं। गंगा जल समस्त जगत को जल प्रदान कर रहा है और यह जल श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकल रहा है। अतयो गंगा के तट महान तीर्थ स्थान बन गए हैं। समस्त ग्रहों के प्रमुख देवता उनकी सेवा में संलग्न है और श्री कृष्ण के कमल चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करने में वे अपना सौभाग्य मानते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी जैसे महान देवता श्रीदेवी लक्ष्मी तथा मैं भी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का एक आंशिक अंग है। फिर भी क्या तुम सोचते हो कि वे राजस्य चिन्हों को धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हैं? अरे यह कितने दुख की बात है कि ये मूर्ख यदुवंश के लोग हम सदस्यों को पादुका के समान समझते हैं और स्वयं को मुकुट के समान। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कुरुवंश के ये नेता अपनी लौकिक संपत्ति एवं ऐश्वर्य के गर्व में उन्मत्त हो गए हैं। उनका प्रत्येक कथन उन्मत्त प्रस्तावों से पूर्ण था। मैं तत्काल उन्हें प्रताड़ित करूंगा और उनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूंगा। यदि मैं उनके विरुद्ध कदम ना उठाऊं तो यह मेरे लिए अनुचित होगा। अतयो मैं आज ही समस्त जगत से कुरुवंश का चिन्ह ही मिटा डालूंगा। मैं तत्काल ही उनका विनाश कर दूंगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे समस्त सृष्टि को जलाकर भस्म कर सकते हैं। वे दृढ़तापूर्वक खड़े हो गए और अपना हल अपने हाथ में पकड़कर उससे भूमि पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार हस्तिनापुर का पूर्ण नगर पृथ्वी से विलग हो गया। तत्पश्चात भगवान श्री बलराम इस नगर को गंगा नदी की जलधारा की ओर घसीटने लगे। इस कारण पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ जैसे कि भूकंप आ गया हो और ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त नगर छिन्नभिन्न हो जाएगा। जब कुरुवंश के समस्त सदस्यों ने देखा कि उनका नगर गंगा के जल में गिरने वाला है और जब उन्होंने अपने नागरिकों का आर्तनाद सुना तो तत्काल ही उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और वे समझ गए कि क्या हो रहा है। इस प्रकार एक क्षण का भी विलंब किए बिना वे अपनी पुत्री लक्ष्मणा को आगे ले आए। सांब ने लक्ष्मणा को हर ले जाने का प्रयास किया था। वे सांब को आगे करके उसके पीछे लक्ष्मणा को रखकर सांब को भी ले आए। श्री भगवान से क्षमा मांगने के लिए कुरुवंश के समस्त सदस्य भगवान श्री बलराम के समक्ष हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। अब सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान श्री बलराम, आप समस्त सुखों के सागर हैं। आप समस्त सृष्टि के पालक व अवलंब हैं। दुर्भाग्यवश हमें आपकी अचिंत्य शक्तियों का ज्ञान नहीं था। प्रिय भगवान, कृपया हमें महामूढ़ समझकर क्षमा कर दीजिए। हमारी बुद्धि भ्रमित व भ्रष्ट हो गई थी। अतयो हम अब आपके सम्मुख आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। आप समस्त सृष्टि के आदि सृष्टा, पालक तथा संहार करता हैं, तत्पश्चात भी आपकी स्थिति सदैव ही दिव्य है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, आप महान संत आपके विषय में चर्चा करते हैं, आप आदि हैं और जगत की प्रत्येक वस्तु आपके खिलौने जैसी है। हे अनंत, प्रत्येक वस्तु पर आपका अधिकार है और बाल क्रीड़ा की भांति आपने समस्त लोकों को अपने सिर पर धारण कर रखा है। प्रलय के समय आप समस्त सृष्टि को अपने में बंद कर लेते हैं। उस समय कारण समुद्र में महाविष्णु के रूप में शयन करते हुए आपके अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता है। प्रिय भगवान, आप अपने अप्राकृत शरीर में इस पृथ्वी पर केवल सृष्टि को बनाए रखने के लिए ही प्रकट हुए हैं। आप समस्त क्रोध, द्वेष तथा वैर से ऊपर हैं। दंड के रूप में भी आप जो कुछ भी करते हैं वह समस्त भौतिक जगत के लिए मांगलिक है। आप अविनाशी श्री भगवान हैं, अतयो हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप समस्त ऐश्वर्यों तथा शक्तियों के सागर हैं। हे असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, हम बारंबार आपके चरणों में गिरकर आपको प्रणाम करते हैं। हम अब पूर्ण रूपेण आपके शरणागत हैं, अतयो कृपया आप हम पर दयालु होकर हमें अभयदान दीजिए। जब पितामह भीष्म देव से लेकर अर्जुन तथा दुर्योधन तक कुरुवंश के समस्त प्रमुख सदस्यों ने इस प्रकार आदरपूर्वक स्तुति कर ली, तब भगवान श्री बलराम मृदुल हो गए और उन्होंने उन सब को विश्वास दिलाया कि भय का कोई कारण नहीं है तथा उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। क्षत्रिय राजाओं में अधिकतर यह परंपरा थी कि विवाह के पूर्व वर तथा वधु पक्ष के लोगों के मध्य किसी प्रकार का युद्ध हो जाए। जब सामने बलात् लक्ष्मणा का हरण किया था, तब कुरुवंश के सदस्य यह देखकर प्रसन्न हुए थे कि वह वास्तव में उसके लिए एक योग्य वर था। फिर भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति को परखने के लिए उन्होंने उससे युद्ध किया और युद्ध के नियमों का आदर न करते हुए उन्होंने उसे बंदी बनाया था। जब यदुवंश ने सांब को कौरवों के बंधन से मुक्त करने का निश्चय किया, तब भगवान श्री बलराम स्वयं ही समझौता करने के लिए आए। वे एक बलशाली क्षत्रिय थे, अतयो उन्होंने कौरवों को तत्काल ही सांब को मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश से कौरव अपनी अल्पज्ञता के कारण स्वयं को अपमानित समझने लगे, अतयो उन्होंने भगवान श्री बलराम की शक्ति को चुनौती दी। वे केवल यह चाहते थे कि श्री बलराम अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन करे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने अपनी कन्या सांब को दी तथा सारा मामला सुलझ गया। दुर्योधन को अपनी पुत्री लक्ष्मणा से अत्यधिक स्नेह था, अतयो उसने सांब से उसका विवाह अत्यंत धूमधाम से किया। उसके दहेज में उसने सर्वप्रथम 1,200 हाथी दिए, जिसमें से प्रत्येक कम से कम 60 वर्ष का था। इसके अतिरिक्त उसने 10,000 उत्तम घोड़े सूर्य रश्मियों के समान जगमगाते हुए 6,000 रथ तथा स्वर्णाभूषणों से अलंकृत 1,000 दासियां भी दी। यदुवंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य भगवान श्री बलराम ने वर सांब के अभिभावक के रूप में कार्य किया तथा अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इस दहेज को स्वीकार किया। कौरव पक्ष की ओर से अपने भव्य स्वागत के उपरांत बलराम जी अत्यंत संतुष्ट हो गए और नवविवाहित दंपति के साथ उन्होंने अपनी राजधानी द्वारका की ओर प्रस्थान किया। विजयी भाव से भगवान श्री बलराम द्वारका पहुंचे जहां उन्होंने अनेक नागरिकों से, जो कि सभी उनके भक्त व मित्र थे, भेंट की। जब वे सब एकत्र हो गए, तब भगवान श्री बलराम जी ने विवाह की समस्त कथा सुनाई। बलराम जी ने जिस प्रकार हस्तिनापुर नगर को कपा दिया था, उसे सुनकर वे चकित हो गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि हस्तिनापुर का स्थान अब नई दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है और नगर में प्रवाहित होने वाली नदी अब यमुना कहलाती है। यद्यपि उस समय इसे गंगा कहते थे, जीव गोस्वामी के समान महाजनों ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होने वाली गंगा तथा यमुना वस्तुतः एक ही नदी है। गंगा के इस भाग को, जो हस्तिनापुर से वृंदावन के क्षेत्र तक प्रवाहित होता है, यमुना कहते हैं, क्योंकि वह भाग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के द्वारा पवित्रकृत है। हस्तिनापुर का वह भाग जिसका ढाल यमुना की ओर है, वर्षा ऋतु में जल प्लवावित हो जाता है और वह सबको भगवान श्री बलराम द्वारा नगर को गंगा में फेंक दिए जाने की धमकी का स्मरण कराता है।